श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक नंबर 24 पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि भीष्म पितामह ने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावत दिदम हिनोम्य हम, कि मैं ये इच्छा कर रहा हूँ गोविंद, आप कृपा करके यहीं पर प्रतीक्षा करिए जब तक कि मैं ये शरीर ना त्याग लूं। वास्तव में भीष्म पितामह हमें वास्तविक कला सिखा रहे हैं। भीष्म पितामह हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में इस तरह से शिक्षित होना चाहिए कि हम स्वेच्छा से प्रसन्न चित्त होकर शरीर त्याग करके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रोते रहें, बिलखते रहें कि नहीं हमें नहीं मरना है, हमें नहीं मरना है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और ऐसे करते करते रोते 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 शरीर त्याग। मतलब ऐसा नहीं है, हमारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। हमने भीष्म की जैसी प्रतिज्ञा नहीं ली है कि हमें भी कोई इच्छा मृत्यु का वरदान मिले, लेकिन मतलब यहाँ पर कहने का क्या है कि भीष्म पितामह अगर चाहते तो अभी भी जी सकते थे, है ना। उनको तो इच्छा मृत्यु का, वो स्वयं कह रहे हैं कलेवरम यावत दिदम हिनोम्यहम, अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। वो अगर अब भी नहीं मरना चाहते तो उनके पास इच्छा मृत्यु की का वरदान था, वो नहीं मरते, लेकिन वो अब तैयार हैं। वे कहते हैं कि अब मैं इसको त्यागना, मतलब हमें भी तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बूढ़े हो जाएं, कोई कोई लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। इवन किसी भी आप किसी भी योनि में होते हो ना, तो भी आप चाहते नहीं हो कि ये वाला शरीर में त्यागूं, बस चाहता जीव मनुष्य मरना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह हमें ये सिखा रहे हैं कि शरीर छोड़ना अनिवार्य है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति सदा सदा के लिए जिंदा रहे, लेकिन शरीर छोड़ना अनिवार्य तो है। इसको छोड़ने के दो तरीके होते हैं, है ना, छोड़ने के दो तरीके। जैसे एक लड़की होती है, उसे अपना घर त्यागना होता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसका ब्याह होता है और वो उस घर से उसे दूसरे घर में जाना पड़ता है, लेकिन वो कितनी तैयारी से जाती है। उसकी माँ ने बचपन से उसके लिए तैयारी की होती है, बचपन से गहने बनाना, उसके लिए धन एकत्रित करना, उसके लिए ड्रेसेस बनाना, उसके लिए क्रॉकरी कटलरी हर चीज जमा करती है, और जिस दिन उसका ब्याह होता है तब कितना सब खुशी से उसको भी विदा करते हैं ना, सब लोग माँ बाप बहन भाई सब कितना संतुष्ट होते हैं कि आज हमारी बच्ची अपने घर जा रही है। उसके भेजने का, उससे दूर होने का एक तरह से दुख तो होता है कि जाहिर सी बात है वो हमारे साथ रहती थी, लेकिन हृदय कितना प्रसन्न होता है कि वो अपने घर जा रही है। उसी तरह से एक अगर कोई अपराधी होता है, उसको अगर कोई किसी घर से निकालना होता है तो क्या करते हैं, अपराधी होगा अपने घर से निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन पुलिस आएगी, उसको मारेगी, पीटेगी, डंडे मारेगी, निकलो यहाँ से, हम आपको जेल में लेकर जाएंगे। तो ऐसे वो चाहेगा कि किसी तरह से मुझे यहाँ से जाना ना पड़े, लेकिन उसे जैसे भी करके निकाला जाता है डंडे वंडे मार के। लेकिन हम देखें तो अगर उस लड़की और इस अपराधी को हम लोग अगर कंपेयर करें, तो जो भक्त होता है ना, वो पूरा जीवन तैयारी करता है भगवान के पास जाने की। जब से भक्त होश संभालता है, वो क्या करता है, रोजाना अपनी साधना करता है, भगवान के साथ अपना प्रेम संबंध निर्माण करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, भागवत और भगवत गीता को पढ़ता है, भगवान के साथ प्रेम करता है, और उसे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भगवान के साथ मिलन होगा। वास्तव में वही मृत्यु जो किसी पापी के लिए यमराज के द्वार खोलती है, वही मृत्यु एक भक्त के लिए भगवान के घर का द्वार उसके लिए खुल जाता है। भक्त जब भक्त की मृत्यु होती है तो भगवान कहते हैं, मन मना भव मर्थतो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशति सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम यदि अपने मन में मेरा चिंतन करते हो, मेरे भक्त बनते हो, मेरी पूजा करते हो, मुझे नमस्कार करते हो, तो माँ में वैश्यति सत्यम ते मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं अपने पास तुमको लेकर जाऊंगा, चाहे संसार कुछ भी करे, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा, अपने घर लेकर जाऊंगा। तो इसी तरह भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसके लिए वही जिस तरह से एक लड़की अपने साजन के घर जाती है, उसी तरह से एक भक्त अपने प्रीतम कृष्ण के घर जाता है, तो बहुत ज्यादा संतुष्ट होता है। यदि उसने पूरा जीवन कृष्ण से प्रेम किया होता है तब, लेकिन अगर उसका कृष्ण के साथ कोई संबंध ही नहीं, कोई नाता ही नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं, तो वो क्या कैसे जाएगा भगवान के घर पे? वो तो जाहिर सी बात है यमराज के घर जाएगा, जहाँ उसको बहुत बहुत यातनाएं दी जाएंगी। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण, मेरी ये इच्छा है कि जब मैं ये शरीर त्यागूं तो तुम मेरे सामने रहो, फिर भले मुझे कहीं भी भेजोगे आप नरक में भी, तो भी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दर्शन होने से भव न पुनर्भव दर्शनम, ये तो मुझे पता है कि दोबारा कभी भी भाव दर्शन आवागमन का चक्कर नहीं भोगना पड़ता। अभी आगे भीष्म पितामह भगवान को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको ऐसे ही खाली खड़ा नहीं होना है, आपको कैसे खड़ा होना है, प्रसन्न हासा ऋण लोचन लसत प्रसन्न, आप हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, और जो आपकी इतनी सुंदर नेत्र हैं, आपके कमल के समान लाल लाल नेत्र हैं, वो जब आप हंसते हो तो उनकी लालिमा बढ़ जाती है, और उनको देखकर हम मुझे सारा अपना जो दुख है ना, अपने जो पीड़ा है ना, वो मैं भूल जाता हूँ। वास्तव में भक्तों, मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है। शास्त्र कहता है कि मृत्यु के समय जितनी पीड़ा होती है उसका वर्णन करना संभव नहीं, इसलिए लेकिन भले ही कितनी भी पीड़ा हो, ये तो एक अनिवार्य सत्य है कि मृत्यु आनी है। ये एक दिन जिस तरह से आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूँ, एक दिन हम सबके लिए आएगा जब हमें इस शरीर को त्यागना होगा। भले ही हम अपने इस शरीर को मैं मान रहे हैं, भले ही हम अपने आप को ये शरीर मान रहे, कुछ भी हो, शरीर को तो त्यागना ही, लेकिन हम किसी को संसार में बताते हैं कि देखो आपको ये शरीर त्यागना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो वो हमें सदैव कहते हैं कि ये आप भक्त लोग हर वक्त मरने की बात क्यों करते रहते हो। कहते हैं, डरती है रूह है यारो, और जी भी कामता है, मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है। मुझसे मरने वाली बातें नहीं करो, मेरी रूह कांप जाती है, आत्मा मेरी डर जाती है। हालांकि आत्मा के डरने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने भक्ति की नहीं है तो आत्मा इसलिए डर रही होती है, क्योंकि पता नहीं कौन से कुत्ते सुअर या कीड़े की जिसमें मुझे जाना पड़ेगा, इस अपराधी ने अपने शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए कितने अपराध किए हैं, भुगतना तो मुझे पड़ेगा। तो कहता है, डरती है रूह यारो और जीभ कांपता है, मेरा मेरा दिल मेरा कलेजा कांप उठता है जब मरने की बात आती है, मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला, मरने की बात ही नहीं सुननी, कोई मरने की बात नहीं सुनना चाहता, लेकिन भले सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, मरना तो है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, ये जो संसार में चाहे कितने भी बड़े बड़े दुष्ट आए या भले भगवान के अवतार है, ये संसार रहने के लिए नहीं है, ये संसार तो छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये संसार छोड़ने के लिए हमें इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो हमें एक न एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना ही है, लेकिन वास्तव में कोई भी मरना नहीं चाहता। जो बहुत गिरे हुए जीव होते हैं, जिनकी बहुत ही कन्दम स्थिति होती है ना, वे भी सोचते हैं कि हम बहुत आनंदित हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम ये स्थिति में सिर्फ ये थोड़ी दो तीन प्रॉब्लम्स हैं वो सेट हो जाएं तो समझो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ पर ही रहना चाहते हैं। गधा हो या कुत्ता या सुअर ही क्यों ना हो, अपनी स्थिति से इतना ज्यादा संतुष्ट होता है कि वो समझता है कि इस जीवन में आनंद है, यहाँ से हटकर, क्योंकि ज्ञान विकसित नहीं हुआ होता है ना, तो वो समझता है कि इससे ज्यादा आनंद और कहाँ हो सकता है। एक कॉकरोच है, उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है कि उसको कॉकरोच को खाने के लिए गंध मिले और एक कॉकरोच मिस कॉकरोच जो है ना उसके साथ उसका संभोग हो जाए, बस ये उसके लिए जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। अगर अगर एक कॉकरोच को बोलो कि आज आपको मिस यूनिवर्स के साथ एक दिन रहने दिया जाएगा, तो वो बोलेगा नहीं, उसमें उसको कोई सुंदरता नहीं दिखेगी, उसको कॉकरोच मिस कॉकरोच ही चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अधिक वो सोच ही नहीं सकता है कि कोई ज्यादा इससे अधिक भी स्वाद हो सकता है। तो इसी तरह मनुष्य जो होता है उसको भी इतना ही कंडम स्वाद कि इस संसार में मुझे शारीरिक सुख मिले, इंद्र तृप्ति मिले, उससे ज्यादा अधिक सुख उसकी सोच ही नहीं जाती कि स्वर्ग का सुख, तो स्वर्ग में क्या सुख होगा और स्वर्ग के बाद जो भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति करने के साथ बाद जब हम भगवान के पास जाएंगे उसका क्या आनंद होगा, उसके बारे में वो सुनकर भी आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसमें क्या होगा, इससे बेहतर क्या है, मुझे संसार में ही 40-50 करोड़ रुपए मिल जाए, एक अच्छा सा बंगला हो, दास दासियां हो, अय्याशी की जिंदगी गुजारो, भक्ति के विषय में या भगवान की प्राप्ति के विषय में वो सोचना चाहता ही नहीं। आज का मनुष्य उसकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है कि वो सोच नहीं सकता है कि कृष्ण प्रेम में कितना आनंद है। बहरहाल यहाँ पर विष्णु पितामह कहते हैं, प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसत, आप हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने लाल लाल कमल जैसे नेत्रों से मेरे सामने खड़े रहिए और मुखाम्बुजा ध्यान पथ चतुर्भुजम, और आपका जो ये मुख है कितना सुंदर है, कमल के जैसा मुख है, वो ऐसा सुंदर है जिसको योगी जन ध्यान में देखते हैं। योगी जन हजारों सालों तक ध्यान लगाते हैं कि कहीं आपके इस मुखारविंद तक हमारा ध्यान टिके, और वो किस स्वरूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पथस चतुर्भुजम के, वो चतुर्भुजी स्वरूप जो है जो योगियों का विषय है। मैं चाहता हूँ कि इस सुंदर चतुर्भुजी रूप में आप मंद मंद मुस्कुराते हुए यहीं पर खड़े रहिए, कब तक, जब तक के कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, जब तक कि मैं ये शरीर त्यागूं। वास्तव में भगवान जो कृष्ण जब संसार में थे तब भगवान विष्णु पितामह जानते थे, विष्णु पितामह के आराध्य देव विष्णु भगवान थे जो चतुर्भुजी थे, तो वो जानते थे कि कृष्ण वही है, इसलिए कृष्ण से ही याचना करते हैं कि क्योंकि मैं उन चतुर्भुजी स्वरूप में आपकी आराधना करता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि आप चतुर्भुजी स्वरूप में ही मेरे सामने प्रकट होइए। कृष्ण जब संसार में थे द्वापर युग में, तो अपनी इच्छा से जब भी दिल करता था वो चतुर्भुजी रूप धारण करते थे, और जब भी दिल करता था वो दो भुज वाले स्वरूप में आ जाते थे, यानी कि भगवान की अपनी इच्छा होती थी। तो उस समय भीष्म देव भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा आकर्षण, मैं जानता हूँ कि आप ही नारायण हो, वो आपके पूर्ण अवतार हैं, तो मेरा आकर्षण क्योंकि उस स्वरूप में है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसी सुंदर स्वरूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए यहीं पर मेरे सामने खड़े रहिए, जब तक कि मेरी ये देह छूट जाए और मैं अपने इस देह को छोड़ूं, तब तक आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, आप यहाँ से हटना नहीं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन ये अंतिम घड़ी का ये सुख देखकर मैं अपने सारे दुखों को भूल जाता हूँ, और ये जो इतनी मुझे पीड़ा हो रही है आपके खड़े होने से, आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी पीड़ा शांत हो गई है, मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है, तुम हटना नहीं यहाँ से, बस मैं प्राण त्यागने ही वाला हूँ। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अरे युधिष्ठिर, ये तो प्राण त्यागने वाले हैं, तुम जल्दी से पूछो, जो भी पूछना है इनसे पूछ लो, वरना ये तो बस अभी प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे हैं, आप जल्दी से पूछो। तो युधिष्ठिर महाराज वास्तव में बहुत पीड़ित थे और देख रहे थे कि भीष्म पितामह की कितनी दुखी कंडीशन है, इतने सारे बाण लगे हुए हैं, इस अवस्था में मैं भला कैसे उनसे प्रश्न करूं, उनको कितना कष्ट होगा उत्तर देने में, वो बोलेंगे तो उनको कितना दुख रहा होगा। तो इसलिए वो पूछना चाहते नहीं थे, वो कब से चुप भी कर रहे थे, भीष्म पितामह ही बोल रहे थे, अभी तक उन्होंने नहीं बोला, लेकिन भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जल्दी पूछो, जल्दी युधिष्ठिर जल्दी पूछ लो, वरना ये तो अभी संसार के महाज्ञानी है और ये अभी प्राण त्याग देंगे तो इनके साथ साथ पूरा ज्ञान भी इनके साथ ही चला जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि संसार उस ज्ञान से अवगत हो, तो कृपया आप अपने प्रश्न कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज अब भीष्म पितामह से पूछेंगे, आप कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे प्रकार से कर सकूँ। हरे कृष्ण।